जय राधमा भव कुंज बिहारे।
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 13 पर 27 दिसंबर 2006 को नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 13। शाश्वत धानस्य विवर्धमान व्यक्ति मन्यत करोति पुंसा हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुखाप्यायाम आशुधते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्य चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्राजतं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण। हरे तो इस तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में हम विदुरा और मैत्रेय का वार्तालाप पढ़ रहे हैं। विदुरा जी मैत्रेय जी को मिले थे गंगा के तट पर हरिद्वार में और उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे मैत्रेय ऋषि से। तो पिछले 3 श्लोकों में वे विदुर जी इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए 11वें श्लोक में विदुर ने कहा है कि मानव समाज में कोई भी संतोष नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान के दिव्य कलापों की चर्चा करे और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आध्यात्मिक कार्य है भगवान के आध्यात्मिक विषयों को सुनने का जो कार्य है इसी के द्वारा आप अपना भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो। और फिर आगे 12वें श्लोक में विदुर ने कहा है कि व्यासदेव जी ने भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है महाभारत और भगवद गीता में और इसका मूल भाव यह था कि भगवान के दिव्य कार्यकलाप को सुनकर आप अपने भौतिक आकर्षण को तोड़ सकोगे। और उसी विषय पर, क्योंकि आज का जो श्लोक है 13वां श्लोक, इसको अगर ठीक ढंग से समझना है तो 11वें और 12वें श्लोक के संदेश को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों श्लोकों का भाव संदेश एक ही है लगभग। तो यहाँ आगे आज के श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सदा भगवान के नामों को सुनता है, भगवान के विषय में कथा सुनता है, इस कृष्ण कथा के द्वारा वो अपना भौतिक आकर्षण को तोड़ सकता है। और ऐसा स्मरण करने से ही, भगवान के चरण कमल का स्मरण करने से ही हम असली आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकते हैं और सब कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज देखा जाए समाज में लगभग सब दुखी हैं। आप देखते हो समाज में बड़ी बड़ी मोटरें, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र लोग पहन रहे हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं कि लोग सुखी हैं। जैसे भगवान ने कहा है भगवद गीता में, भौतिक जगत के दो लक्षण हैं, क्या है, दुखाल हम प्रशांत, कि कोई भी अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सकता और हर चीज जो है स्थाई है। पर इन सब समस्या का असली उपाय क्या है, उपाय दिया जा रहा है भागवतों में। प्रहलाद महाराज जी ने आज से 5000 साल पूर्व कहा है, नहते विदुम स्वर्ग गतिम है विष्णु, कि आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख शांति प्राप्त करने का क्या है उपाय। तो असली उपाय है जो कि इन श्लोकों में दिया जा रहा है। और विदुर जी कह रहे हैं जो श्रद्धावान भक्त है वो रुचि लेता है भगवान के कथा में और भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करने में। अब आप कहोगे ये पहला श्लोक तो नहीं है पूरे भागवतम में जहां की इस विषय की चर्चा की जा रही है। प्रथम स्कंध में भी अनेक श्लोक हैं जिनमें यही संदेश दिया जा रहा है, शन्मता स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हेदियंतस्तो बदरानी विदुनोदी सुरत सताम। पहले एक स्कंध में भी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं अभद्रानी जो हृदय की मैल है वो निकल सकती है कैसे, अगर आप भगवान के दिव्य नामों का क्या करो, श्रवणम करो। तो बार बार 12वें स्कंद तक इस विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें भगवान के दिव्य नामों को सुनना चाहिए, भगवान की कथा में रुचि लेनी चाहिए, जो यही एक साधन है जिसके द्वारा आप अपने हृदय की मैल को दूर कर सकते हो। आप रोज शिक्षाशा के श्लोकों का उच्चारण करते हो और बिल्कुल पहले श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु जी ने यही भाव प्रकट किया है जो भाव विदुर जी पिछले 3 श्लोकों में प्रकट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने वैसे अपने शिष्यों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं वो केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शिक्षांश के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल पहले श्लोक में ही महाप्रभु जी ने क्या कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नामों का के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाती है। क्या कारण है कि हम कृष्णा कथा में रुचि नहीं लेते, क्या कारण है कि हम भक्ति के मार्ग में नहीं जोड़ते। हम सब भक्ति के महत्व को जानते हैं पर जानते हुए भी हम इस मार्ग में नहीं जोड़ते, क्या कारण है, अनर्थस का प्रभाव, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव, और इनके प्रभाव के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। भगवद गीता के 3rd अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा क्या कारण है कि वे जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं, हम जानते हैं ये गलत है, ये पाप का कार्य है, शास्त्र के विपरीत है, जब भी हम इसको करते हैं क्या कारण है? तो भगवान ने क्या कहा? काम ऐसे क्रोध ऐसे राज गुण समुद्र प्रभाव। भगवान ने कहा कि इसका कारण क्या है? काम का प्रभाव। फिर भगवान ने आगे ये भी कहा कि इस शत्रु का निवास का स्थान कहाँ है? कहाँ है? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। आगे भगवान ने यह भी कहा कि अगर आप इसे नष्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? ज्ञान के तलवार से। और ज्ञान की तलवार क्या है? श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना। गोविंद दास भाजा हरे मन भजन में कहते हैं कि जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। और वो उदाहरण देते हैं जिस प्रकार कमल के फूल में अगर पानी का बूंद हो तो पानी का बूंद किसी समय भी नीचे गिर सकता है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं ये जो जीवन है किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो उपाय क्या है? बाजा हरि पादा नीति रे, हरि की शरण लो। तो हरि की शरण कैसे लोगे? तो इस विषय में गोविंद दास जी क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया था कि किसी न किसी रूप से उनके बेटे का जो आकर्षण है भगवान के प्रति वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। तो उन्होंने संद और अमर का शुक्राचार्य के दो पुत्र थे और प्रहलाद के अध्यापक, उन्हें खास खा था किसी प्रकार से जो विष्णु के प्रति उनका आकर्षण है उसको समाप्त करो। तो प्रहलाद जब पाठशाला से घर लौटे थे तो उनके पिता ने पूछा, बताओ बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ के आए? बाप ने बेटे को गोद में बिठाया, बड़े प्रेम से पूछा, बताओ आज स्कूल में क्या सीखे? उन्होंने सोचा था कि पुत्र कहेगा आप सर्वश्रेष्ठ हो और विष्णु की भक्ति में कोई महत्व नहीं। और बेटे ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदम भक्ति का उपदेश दिया। तो आप देखते हो शास्त्रों में इस विषय पर बल दिया गया है। ये तीन श्लोकों का जो संदेश है संक्षेप में यही है कि हमें श्रवणम और कीर्तनम में रुचि लेनी चाहिए। तो शास्त्र का संदेश यह है कि अगर आपको असली सुख चाहिए, अगर आप अपने भौतिक आकर्षण को तोड़ना चाहते हो, अगर आप सब कष्टों से छुटकारा चाहते हो, क्या है उपाय? कृष्ण कथा में हमें रुचि लेनी चाहिए। यह है सबसे आवश्यक कार्य। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में कहा था कि जब हमारे भक्त जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए और वो लोगों को कहते हैं पढ़िए भगवद गीता, खरीदे और भगवद गीता पढ़ो, तो वो भी श्रवणम कीर्तनम है। तो आप लोग सारा दिन जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो वो कार्य भी श्रवणम कीर्तनम है। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है? कृष्ण भगवान का संदेश। और आप लोगों को क्या कह रहे हो? भागवत गीता पढ़ो। तो सारा दिन आप क्या कर रहे हो? श्रवणम और कीर्तनम कर रहे हो, जबकि आप लोगों से कहते हो पढ़िए इन ग्रंथों को, तो वो भी है श्रवणम और कीर्तनम। अब श्री उपदेशर मित्र में रूप गोस्वामी जी ने हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। वैसे तो श्री उपदेशर मित्र में केवल 11 श्लोक है, पर हर श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने 4-5-6 पेज का तात्पर्य दिया है। हर श्लोक का बहुत ही गहरा संदेश है। सो श्री उपदेशरमिन के 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं ये हैं शुगर कैंडी, मिश्री जैसे मीठे हैं। भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का क्या वर्णन, ये हैं मीठे हैं, मिश्री जैसे, चीनी जैसे। पर हमारी जो जीभ है इसके मीठापन को महसूस नहीं कर सकती। क्यों? जीभ मीठापन को क्यों नहीं महसूस कर सकती? क्योंकि जीभ में अविद्या की बीमारी है। जैसे कि अगर आपको जॉइंटस की बीमारी हो तो आपको गन्ने का रस भी दिया जाए आप उसका मीठापन महसूस नहीं कर पाओगे। आपको उसका मीठापन कड़वा दिखेगा आपको, पर जैसे आपकी बीमारी ठीक होगी उसी मात्रा में आप उस गन्ने के रस के मीठेपन को अनुभव कर सकोगे। जैसे कि आप बीमार हो, आपको बुखार है और आपको कितना भी अच्छा प्रसाद कोई बना कर दे, आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा, है ना, आपका अनुभव होगा। पर जैसे आपकी बीमारी दूर होगी उसी मात्रा में आपको उसका टेस्ट भी अनुभव होगा। उसी प्रकार अविद्या की बीमारी के कारण हम भगवान के नामों में रुचि नहीं ले पाते, और जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते भी हैं तो इसका हमें अधिक आनंद अनुभव नहीं होता। इसलिए हम जब जप करते भी हैं तो जप करके जैसे जब समाप्त हुआ ऐसे लगता है कि हमने बहुत भारी बोझे को उठा दिया ही नीचे। अगर हमारे में रुचि हो तो हमारा भाव रहेगा कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करते जाएं। आपसे पूछा जाए कितना जाप करना चाहिए तो आप कहोगे 16 माला। 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा वो क्या है, मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा आप निरंतर भी जाप कर सकते हो अगर सुविधा प्राप्त हो तो। कीर्तन आदि सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है अगर तुम सदा हरि के नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो ये आवश्यक है क्या, त्रिनादपि सुनिश्चेना, अपने आप को सहनशील बनाओ, अपने आप को घास से भी ज्यादा पतित मानो, अपने आप को पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, और दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं नाम न करी भव दनीर सर्वशक्ति, हे भगवान अपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। आप रोज ये सुनते हो है कि नहीं, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिना, भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। पर महाप्रभु जी कहते हैं कि हालांकि अपने नामों में आपने पूरी शक्ति डाली है, जब भी आपके नामों के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है। आप अनुभव करते हो खुद, जब के बगैर नींद आ जाती है, क्लास सुन रहे हो क्लास सुनते सुनते नींद आ जाती है, क्यों, क्योंकि इन विषयों में हमारी गहरी रुचि नहीं है। आपको कभी प्रसाद खाते हुए नींद आती है, हमने प्रसाद माहौल में तो कभी आपको सोते हुए नहीं देखा, पर क्लास में सोते हुए देखते हो, जब के वक्त सोते हुए देखते हो, क्या कारण है? कारण यह है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हालांकि आपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, महाप्रभु जी ने क्या कहा, मेरा दुर्भाग्य क्या है, महाप्रभु जी थे स्वयं भगवान, प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, तो महाप्रभु जी ने कहा कि हालांकि आपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं क्या कि मुझे आपके नामों के प्रति कुछ आकर्षण ही नहीं है। तो ये असलियत है, भगवान के नामों के प्रति हमारा बहुत कम आकर्षण है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप सब समस्याओं को हल करना चाहते हो तो हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, और पिछले 3 श्लोकों में इसी विषय पर बल दिया जा रहा है। और आगे विदुरा जी ये भी कहते हैं जो पापी व्यक्ति हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वो किसी प्रकार से भी भगवान के नामों के प्रति आकर्षित नहीं होते। जैसे कि आप सबका अभ्यास है, आप कईयों से विनती करते हो जाप करो, कईयों को कहते हो हरि नाम का जाप करो, इन ग्रंथों को खरीदो, पर वो नहीं खरीदते, जाप नहीं करते। तो विदुर जी कहते हैं जो पापी हैं वो उन्हें आप जो हरि नाम की महिमा भी सुनाते हो तो उसमें रुचि नहीं लेते। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो कृष्ण कथा में रुचि लेता है। अब कृष्ण कथा में रुचि लेने से भक्ति मजबूत बनती है, और प्रजल्प में रुचि लेने से भक्ति नष्ट होती है। प्रजल्प किसे कहते हैं? प्रजल्प उसे कहते हैं जिस विषय का भगवान से कोई संबंध नहीं है, यह भौतिक चर्चा। आप भौतिक चर्चा में रुचि लोगे तो जो भक्ति है नष्ट हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उस कार्य को त्यागो। तो रूपा गोस्वामी जी आगे इस विषय पर हमें शिक्षा देते हैं, भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए प्रतिकूल के विषय में वो कहते हैं, अत्याहारा प्रायश्चित प्रजल्प यमाग्रह जन संघर्ष लोलियमच सद्वीर भक्ति विनश, कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर आप क्या करोगे, अत्याहारा आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना, आवश्यकता से अधिक खाना, आप भौतिक विषयों की चर्चा करना जिन्हें कृष्ण जिन्हें प्रजल्प कहा जाता है, नियमों का पालन करना केवल नाम के लिए, ये सोचे बिना कि इनके पीछे असली भाव क्या है, भौतिक वादियों की संगत रखना आवश्यकता से अधिक, इन कार्यों के द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम सबका यह भाव रहना चाहिए कि अगर कोई आए हमारे साथ प्रजल्प करने के लिए तो हमें हाथ जोड़कर उसे क्या कहना चाहिए, मैं अपनी भक्ति को नष्ट नहीं करना चाहता आप, क्योंकि प्रजल्प करने के लिए भी दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, एक जो सुनाएगा दूसरा जो सुनेगा। अगर कोई सुनेगा नहीं तो दीवारों से तो कोई प्रजल्प नहीं करता कि करता है। गोपियों का इतना गहरा आकर्षण था परम भगवान के प्रति, जब भगवान ब्रज छोड़कर गए मथुरा तो एक बम्बल भी आया था, आई थी वहां भ्रमण, तो उससे गोपियां बात करने लगी कृष्ण भगवान के विषय में। तो हमारी स्थिति में दीवारों के साथ आप सर पर जलपा नहीं करोगे, आपको प्रजल्पा करने के लिए कोई साथी चाहिए। तो अगर कोई आए प्रजल्पा करने के लिए तो आप उसे कहिएगा कि मैं अपनी भक्ति को नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि रूपक गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है क्या कि प्रजल्पा के द्वारा भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। और प्रजल्पा किसे कहते हैं, वो चर्चा जिसका कृष्णा से कुछ संबंध नहीं, ईर्ष्या द्वेष के कारण चर्चा करना या भौतिक विषयों की चर्चा करना, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, खेला क्रिकेट का क्या स्कोर है, कौन सी फिल्में चल रही हैं, इन सब विषयों की चर्चा करोगे तो भक्ति कमजोर हो जाएगी। जैसे कि आज के वातावरण में सबको ध्यान रहता है स्वास्थ्य के विषय में, तो अगर कोई चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो उसे आप नहीं स्वीकार करते। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। रूपक गोस्वामी जी तो कहते हैं कि हे मेरे मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। आपको कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही कीमत भरनी पड़ेगी। इसलिए रूपक गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले कदम में गुरु की शरण लो, गुरु की सेवा करो, दीक्षा ग्रहण करो, फिर पूछो गुरु से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किन कार्यों की आवश्यकता है, और आगे अगर कुछ त्यागना भी पड़े त्यागो, पर भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए आपको रसगुल्ला का शौक है, गुलाब जामुन का, आपको डायबिटीज हो जाए तो आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओगे, नहीं खाओगे, आप चाहते नहीं कि आपकी बीमारी बढ़े। तो उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी हमें जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें त्यागना चाहिए। तो रूपक गोस्वामी जी कहते हैं प्रजल्पा से बचना चाहिए, और अगर प्रजल्पा से बचोगे बचना चाहते हो तो क्या करना आवश्यक है, कृष्ण कथा, मन ने किसी न किसी विषय का चिंतन करना है, जीव ने किसी न किसी विषय की चर्चा करनी है, तो जीव द्वारा क्या करो, कृष्ण कथा करो। तो यहां कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति भौतिक आकर्षण को तोड़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक कष्टों से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए क्या है उपाय, कृष्ण कथा में रुचि लेना। तो जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो वो है कृष्ण कथा का एक उदाहरण। जब आप भागवतम भगवद गीता सुनते हो ये कृष्ण कथा का एक और उदाहरण। इसीलिए इसी विषय पर भागवत में कहा गया है, नास्तप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोक है भक्ति भावती नहीं सके। अगर आप नियमित रूप से बकायदा भागवत और गीता को सुनोगे तो क्या लाभ होगा? हृदय की जो मैल है वो दूर होगी। इसलिए कहा गया है जब आप जप माला करो सावधानी से करो। जब आप भागवतम सुनते हो गीता पढ़ते हो सुनते हो ध्यान से सुनो। ये नहीं कि आप क्लास में बैठे हो और आपका मन भटक रहा है किधर और, ये नहीं कि आप क्लास में बैठे हो और सो रहे हो। आपको ध्यान से सुनोगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभुपाद जी हमें कहते थे कि जब वो भक्ति सिद्धांत जी के प्रवचन को सुनने जाते थे कई बार उन्हें समझ भी नहीं आता था क्या उपदेश दिया जा रहा है, पर वो बड़े ध्यान से सुनते थे और कहते थे क्योंकि मैंने ध्यान से सुना है इसलिए आज मैं उत्साह से प्रचार कर रहा हूं। तो इन श्लोकों में भागवत गीता के संदेश पर भी बल दिया गया है और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि गीता के संदेश में और परम भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण इत्यादि, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम भगवान के नामों की चर्चा करते हैं, उच्चारण करते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, भगवान के रूप का स्मरण करते हैं। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं तात्पर्य में कि भागवत गीता को हमें समझना चाहिए कैसे, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। अगर आप भागवत गीता को परंपरा द्वारा प्राप्त करोगे तो आपको असली संदेश प्राप्त होगा। भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में गीता के इतिहास का वर्णन किया है। भगवान ने क्या कहा, मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे, सूर्य के देवता, फिर ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था पर समय के साथ खो गया था, तो इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है हमें प्राप्त करना चाहिए कैसे, किसी भक्त के द्वारा। और अगर भक्त के द्वारा प्राप्त हो तो इसका बड़ा अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता के संदेश में और भगवान में कोई अंतर नहीं। इस विषय पर प्रभुपाद जी चौथे स्कंद में चर्चा करते हैं। भीष्म देव का सौभाग्य था कि परम भगवान स्वयं प्रकट हुए थे अपने पांडव भाइयों के साथ, भक्तों देवताओं के साथ, जबकि भीष्म देव शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे थे, है कि नहीं? तो ऐसे देखा जाए हर भक्त की इच्छा है कि मैं जब शरीर त्यागूं मैं भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकूं, भगवान वहां हो। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या ये संभव है कि जब आपके शरीर त्यागने का समय होगा परम भगवान स्वयं वहां प्रकट होंगे? हाँ? नहीं है। कैसे? अगर आप हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो और भागवत गीता के संदेश को सुन रहे हो तो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। अंते नारायण स्मृति। तो इसी विषय पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जब आप गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हो, गीता का संदेश की चर्चा कर रहे हो, गीता के महत्व की चर्चा कर रहे हो, गीता को बांटने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए क्या कि परम भगवान स्वयं वह उपस्थित है। गीता के संदेश में और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता के श्रवणम से, भगवद गीता के अध्ययन से जो हमारा भौतिक आकर्षण है वो नष्ट होगा। पिछले श्लोक में भी भगवद गीता के संदेश पर महत्व दिया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा था कुर्मा ब्राह्मण से, कि हमें रोज नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए और भागवत गीता, इन दो और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जितने ध्यान से हम पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ही गहरा प्रभाव होगा। जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि आप भगवान के नामों का उच्चारण तीन अलग परिस्थितियों में कर सकते हो। कैसे? नाम अपराध आगे और आगे शुद्ध नाम। आप जप कर सकते हो लापरवाही के साथ, जप कर रहे हो और 50 और काम कर रहे हो साथ, पर इसके आगे स्थिति में जप करो सावधानी के साथ अपराधों से बचते हुए। इसे कहा गया है नाम भाषा। और शुद्ध नाम का अर्थ आप बड़े ध्यान से जाप कर रहे हो और अपने आप को 10 नाम अपराधों से बचा रहे हो। तो हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम नाम भाषा की स्थिति में भगवान के नामों का जाप करें, जाप करते वक्त सावधानी से जाप करें। 10 नाम अपराधों में जो 10वां नाम अपराध है उसके दो भाग हैं। श्रीदास स्वामी के अनुसार दूसरा भाग यह है सावधानी से जाप नहीं करना। तो जब आप अपने 16 माला का जाप कर रहे हो पर सावधानी से नहीं कर रहे तो क्या माना जाता है? नाम अपराध। और जब तक आप नाम अपराध करोगे भगवत प्रेम अनुकूल नहीं होगा। वो श्रद्धा नस्या, श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। कई बार भक्त पूछते हैं निष्ठा कैसे अनुकूल होगी। निष्ठा अनुकूल होने का उपाय क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ है नियमित नियमों का पालन करना, सावधानी से जप करना, सावधानी से भागवत को सुनना, सावधानी से भागवत गीता को सुनना। भागवत गीता को सुनना भी आवश्यक है। इसलिए शाम के समय जब गीता की क्लास होती है और आप कोई महत्वपूर्ण सेवा में नहीं जुड़े हो तो हमें जरूर आ जाना चाहिए गीता को सुनने के लिए। ये नहीं कि गीता की क्लास केवल नए भक्तों के लिए है। गीता का संदेश ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतने ध्यान से आपको समझ आएगा। तो इसीलिए इन श्लोकों में कहा गया है, भगवद गीता के संदेश पर महत्व दिया गया है और कहा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त है भगवान के वो कृष्णा कथा में ही रुचि लेते हैं। और जितने जितना अधिक रुचि लोगे कृष्णा कथा में उतनी तेजी के साथ ही आपका भौतिक आकर्षण जो है वो समाप्त होगा। जैसे भगवान कहते हैं देवी एष गुना माई मम माया दुरतया, मेरी माया का विरोध करना बड़ा कठिन है पर अगर कोई मेरी शरण ले तो वो इसका विरोध कर सकता है। शरण लेने का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेना। तो आप सबको इन श्लोकों के संदेश का लाभ उठाना चाहिए और ये बिना शंका के समझ जाना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के बिना आप भौतिक आकर्षण को नहीं त्याग सकते। और क्योंकि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है, क्योंकि भगवान की कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं, आप दिन रात सुनोगे तो भी आप थकोगे नहीं। ये है भगवान के दिव्य नामों की। भगवतम के 12वें स्कंद तक इसी विषय पर बल दिया जाएगा। और जैसे प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं बार बार सुनोगे तो ये विचार हृदय में बैठेगा। हम इतने ढीठ हैं कि एक दो बार सुनने से काम नहीं चलता, हमें रोज सुनने की आवश्यकता है। और रोज इसके महत्व को सुनोगे फिर आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये विचार बैठेगा। भौतिक समाज का भी यही नियम है। आप एक ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हो बार बार, है ना, सैमसंग टेलीफोन खरीदो, सोनी टेलीविजन खरीदो, आप रोज देखते हो। 5 साल पहले भी देख रहे थे, भविष्य में भी देखोगे। क्यों? वो भी प्रयास करें आपको बार बार याद दिलाने के लिए, हमारा ब्रांड खरीदो, हमारी वस्तु खरीदो, है ना। तो हमारे पास उस प्रकार का धन नहीं है कि हम जगह बिलबोर्ड लगाएं चैंट हरे कृष्ण। हमें हम प्रचार करते हैं, शास्त्र को सुनते हैं और बार बार ये संदेश सुनकर ये विचार हमारे हृदय में बैठता है। तो संक्षेप में आज के श्लोक में विदुरा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों में रुचि ले, कृष्ण कथा में रुचि ले, वही व्यक्ति अपने भौतिक आकर्षण को त्याग सकेगा। तो अगर आप ध्यान से अपना जाप नहीं कर रहे, ध्यान से भगवद गीता को नहीं सुन रहे, ध्यान से इन ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे तो इसका क्या परिणाम होगा? आपका भौतिक आकर्षण वहां का वहां ही रहेगा। दीक्षा ले ली, ब्राह्मण दीक्षा ले ली, पर भौतिक आकर्षण वैसा ही रहेगा तो मन भटकते रहेगा भौतिक विषयों में। तो हमें कृष्णा कथा में रुचि लेनी चाहिए, हमारा प्रयास रहना चाहिए सुबह से रात तक हम कृष्णा कथा करते रहे। ये नहीं कि 16 माला हो गया तो बस जाप माला को आश्रम में रख दो या घर में रख दो, प्रयास रहना चाहिए। और कभी आप ऐसी स्थिति में हो जहां जाप नहीं कर सकते, जैसे आप नौकरी कर रहे हो या धंधा कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जाप माला के बिगड़ भी हरिनाम का उच्चारण कर सकते हो। तो हमें सदा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हरिनाम का उच्चारण करें, और इस प्रकार आप अपने आप को भौतिक आकर्षण से घटा सकोगे। हरे कृष्ण।